धूप में कब छाओ बनकर लहरों में कभी नाव बनकर धूप में कभी छाओ बनकर लहरों में कभी नाव बनकर लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ मेरे बाबा है साथ 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 जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा हर लम्हा दीप बन के जले कांटों पे भी मेरे संग संग चले अब तो लगता है जन्नत बनी हयात मेरे बाबा है साथ 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 मेरे बाबा है साथ
ओम शांति। आज क्वेश्चन आंसर में जो प्रश्न है वो है कि मेहनत से छूटने की विधि क्या है, और ये मुरली है 17 मार्च 1982 की, जिसमें लास्ट पैराग्राफ है और इसमें मेहनत से छूटने की विधि बाबा ने बताई हुई है। इस मुरली का जो टाइटल है संगम युग का विशेष वरदान अमर भव। तो मेहनत, मेहनत शब्द के बारे में हम क्या जानते हैं? वैसे तो दुनिया में भी कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, और शिव बाबा ने भी हमें कई बार ज्ञान के चारों जो अपने सब्जेक्ट है उसमें मेहनत करने के लिए कहा हुआ है। कभी कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई करो, से आंखों में तेल डालो, और मेहनत के लिए जैसे कि टॉपिक दिया था चंद्रशेखर भाई को कि एड़ी चोटी का जोर लगाना है, फिर 20 नाखूनों का जोर लगाना है, और मेहनत के लिए बाबा ने क्या क्या शब्द बताए हुए हैं। आज के वरदान में लास्ट के 3 शब्द, हाँ, अलबेले नहीं बनना है तो क्या बनना है, अलर्ट, अलर्ट, एक्यूरेट, ऑलराउंडर। तो आज बाबा ने विधि भी बताई हुई है। तो मेहनत शब्द तो वैसे तो अच्छा है, तो फिर बाबा मेहनत से क्यों छुड़ाना चाहते? हाँ जरूर, दुनिया में मेहनत जो की जाती है उस मेहनत के बाद उनको कुछ प्राप्ति हो, इसलिए। तो अभी हमारा जो युग है, जिस युग में हम जी रहे हैं, संगम युग में, ये तो मौजों का युग है, ना कि सिर्फ मेहनत करते रहो करते रहो। मेहनत के साथ साथ हमें यहाँ प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। हाँ, ये जो मेहनत है इसमें मोहब्बत है, इसमें दुनिया में जो मेहनत होती है उसमें थकान होती है, थकान से फिर क्या होता है, अलबेलापन आ जाता है, और फिर सोचते हैं चलो आज छोड़ो कल करेंगे, हाँ बहानेबाजी हो जाती है। अगर किसी भी कार्य में, अगर कार्य छोटा है या बड़ा है, लेकिन उसमें अगर मोहब्बत है, हमारी अपनी खुद की रुचि है, तो वो मेहनत नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी, और फिर क्या होगा, मोहब्बत में हम, हाँ मौज ही लगेगी। काम छोटा है या बड़ा है, मेहनत दो प्रकार की होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है मेंटल। तो फिजिकल मेहनत जब करते हैं तब उसके फायदे क्या होते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियों से दूर रहता है, और हाँ मेहनत है तो हल्के फुल्के रहते हैं, और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्थान होते हैं कि देखो ये इतना मेहनत के काम करते हुए भी कितना उमंग उत्साह में रहता है, तो दूसरे के लिए भी क्या है, एक स्फूर्तिला स्थान बन जाता है। हाँ कर्म ही पूजा है, और मेहनत करने वाले जैसे आर्मी में देखो, भले उनको रोज युद्ध नहीं करना है, लेकिन वो अपने आप को एवर रेडी रखते हैं, अलर्ट रखते हैं, रोज क्या करते हो, एक्सरसाइज करते। वैसे बाबा ने भी हमें यहाँ कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, वो भी हम देखेंगे। तो आज बाबा हमें मेहनत से मुक्त कराने के लिए आए हैं, और कौन सी मेहनत से मुक्त कराने के लिए आए हैं, जो माया बीच में थकान लाती है, तो मेहनत, तो मेहनत शब्द से, मेहनत से बाबा हमें मुक्त कराने आए हैं। वो कौन सी मेहनत है, जो दुनियावी भाषा में कहेंगे तो डोंकी वर्क है ना, कि सिर्फ गधे जैसा काम नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो इसको जब देखा तो एक कहानी याद आई, स्टोरी जो बचपन में हमें सिखाई गई थी, कि एक प्यासा कौवा था। तो वो थर्स्टी क्राउ क्या करता है, गर्मी के दिनों में बहुत प्यासा है, और अब ढूंढता है कि कहीं तो मुझे जल मिल जाए। तो जंगल से गुजरते गुजरते खेत के ऊपर आता है, तो उसको मटका दिखाई देता है, और बड़ी आशा के साथ उस मटके के ऊपर वो क्या करता है, लैंडिंग करता है। वो झाग के अंदर देखता है तो उस मटके में नीचे से थोड़ा सा पानी है। अब प्यास तो लगी है लेकिन जीवा तो वहां तक पहुंच नहीं रही है, तो वो क्या करता है, युक्ति करता है, तो उसमें कंकड़ पत्थर लाके डालता है, और वो पानी धीरे धीरे ऊपर आता है, और उसकी अपनी प्यास बुझाता है। तो अभी ये जो कहानी है ये हमारे जमाने की है, अभी कौवा जो है अपडेट हो चुका है, अभी कौवा बहुत स्मार्ट हो गया है, अभी कौवा कंकड़ पत्थर उठाने की मेहनत नहीं कर रहा है, एडवांस कौवा है। तो वो क्या करता है, एक नारियल पानी वाले के थल्ले पे से ना एक स्ट्रॉ उठा लेता है, नली, और वो स्ट्रॉ लाके उस मटके में डालता है और पानी खींच लेता है। बिल्कुल इसी तरह हमें कौवा नहीं बनना है लेकिन स्मार्ट बनना है। तो बाबा का यही कहना है आज कि बच्चों को मैं मेहनत से छुड़ाने के लिए आया हूं, और बाबा को हम बच्चों को देख के हमारा भूतकाल याद आता है, और बाबा कहते हैं कि बच्चों आपने आधा कल्प बहुत मेहनत की है, मुझे तो वो मेहनत याद नहीं है, आप किसी ने इस जन्म में की होंगी तो आपको भी याद होगा, भक्ति की है इस जन्म में, बहुत किया, बहुत ढूंढा, तो खैर हमने तो की नहीं इस जन्म में, लेकिन जो अभी के भक्त हैं उनको भी देखते हैं तो सचमुच रहम आता है। जब नवरात्रि होती है तो क्या बिना चप्पल के दूर दूर तक वो चले जाते हैं, उपवास रखते हैं 9 दिन का। कितनी वो भगवान की प्राप्ति के लिए आराधना करते हैं, भले कुछ थोड़ा बहुत स्वार्थ भी होता है, वो भक्ति निस्वार्थ भी नहीं होती। भगवान हमारा कुछ कार्य करा दो तो फिर हम इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे, मन्नतें मांगते हैं और भगवान को खुश करने की मेहनत तो करते हैं ढूंढने की। तो फिर बाबा ने आज हमें विधि बताई है, तो वो विधि क्या है, मेहनत से छूटने की विधि बाबा आज हमें बता रहे हैं। कौन सी है वो? एक ही शब्द है, मेरा बाबा। इस सीजन में भी वो मुरली रिपीट हुई थी, मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ मदद करो, उस लाइन को हमने रिपीट भी किया था, रिवाइज भी किया था। तो अगर बाबा शब्द है तो मेहनत नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा ने कहा अगर एक बाबा मेरा हो गया तो अनेक मेरा खत्म हो गया। एक मेरा को याद रखना सहज है और अनेक जो मेरा है उसमें क्या है, मुश्किल है, मेहनत है। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप ये मेरा मेरा कहेंगे ना, मेरा बाबा, तो बाबा ने यहाँ पे एक टेम्पटेशन दिया है हमें क्या, कि आप सतयुग में भी आ जाएंगे। बस क्या कहना है, मेरा बाबा, न कि क्या कहना है, मेरा पोतरा, मेरा धोतरा, मेरा घर, मेरी बहू, है ना। ये जो बाबा ने कहा मेरे मेरे की जो लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, अब इसको समाप्त करो। किससे समाप्त करो? मेरा बाबा से। तो अनेकों को भुलाकर एक बाप को याद करो तो क्या हो जाएंगे, मेहनत से छूट, आराम के झूले में झूलते रहेंगे। मेहनत से भी छूट जाएंगे और आराम के झूले में झूलते रहेंगे। सदा बाप की याद में आराम में रहो। तो बाप अभी चाहते हैं, अपने ठाकुरों की सेवा करना चाहता है, मालिश करना चाहता है। कई बार बाबा बोलते हैं कि मैं आपकी क्या करता हूँ, मालिश करता हूँ। जब बांधेलियों की बात निकलती है तो वो कैसे छिपकर मधुबन तक पहुँचती है या मुरली तक पहुँचती है सेंटर तक, तो बाबा कहते हैं थक गई होंगी ना, तो मैं आपके क्या करता हूँ, पाँव दबाता हूँ। तो बाप की याद सिर्फ तन की नहीं, मन की ही नहीं तो तन की भी थकान दूर कराने वाली है। तो ये जो मेरा बाबा शब्द है उसको यूज करने की बाबा ने आज विधि बताई। तो अभी हम देखेंगे कि बाबा ने कहा है कि आधा कल्प आपने बहुत थके हुए हो, आधा कल्प के, तो वो कौन कौन सी थकान है जब बाबा हमें मिला नहीं था और हमें किन किन बातों से हम थके थे? हाँ, संबंध निभाने से और हाँ जिस्मानी यात्रा, इसने तो बहुत थकाया, ठंडी गर्मी, है ना। और क्या किया, उपवास भी किए, व्रत भी रखे, उसमें भी थक गए, यज्ञ किए, हवन किए, भगवान को ढूंढने के लिए, उसमें भी थके। हाँ, कि एक क्षण भी हमें क्या हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। फिर थकान कौन सी, आजीविका के लिए, खुद का पेट भरने के लिए, खुद का पेट, खुद की जो गृहस्थी है उसको संभालने के लिए भक्त तो लोगों ने क्या किए, कष्ट किए। और कौन कौन सी थकान हुई, हाँ इच्छाओं की थकान, इच्छाओं के कारण मनुष्य क्या हो गया, थक गया, एक के बाद एक के बाद 99 के चक्कर में, 99 के चक्कर में वो फंस गया कि और थोड़ा और थोड़ा, इस चक्कर में और ही थकता गया। तो ये हो गई आधा कल्प की थकान, जिसमें हमने भगवान को ढूंढा, और कई कारणों से हम थकते गए, क्योंकि विकारी बने तो भिकारी भी बने, भिकारी बने तो मेहनत भी हो गई। फिर और कौन सी थकान हुई? अब इस जन्म में हम ब्राह्मण तो बन गए, पहले कौन सी बातें थी जिसमें हमें मेहनत लगा? अभी मेहनत नहीं है। कौन कौन सी बातें थी जब हम ज्ञान में आए, बाबा के बने? कई बातों में मेहनत लगी होगी जो अभी नहीं है। कौन सी है वो बातें? नहीं, बाबा ने कहा वो आधा कल्प की थकान। अभी हम इस जन्म की, ब्राह्मण जन्म में जो शुरुआत में हमें कई बातों में कि जैसे कि इस विद्यालय का यूनिफॉर्म है, हाँ यूनिफॉर्म है, सफेद ड्रेस पहनना है, तो क्या हुआ? लोग ला जाए कि अरे लोग क्या कहेंगे, है ना? एक तरफ अच्छा तो लग रहा है सफेद कपड़ा पहनना, भगवान की श्रीमत है, उसको मैं धारण करूं, अंदर से संकल्प तो है, लेकिन लोक लाज भी है, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, तो उसमें मेहनत लगी। और खान पान की शुद्धि है, घर में एक ही व्यक्ति ज्ञान में है, बाकी नहीं है, तो उसको मेहनत तो करना पड़ा, स्ट्रगल तो करना पड़ा उनके साथ, या फिर खुद की इच्छाएं, खुद को ही वो चीज बहुत अच्छी लगती थी, टेस्टी लगती थी, है? बाहर जाके पानी पूरी खाना है, भेल खानी है, लेकिन अभी उसके सामने से गुजरते हुए मन को मारना पड़ रहा है या सचमुच परमात्म मोहब्बत में हमने उस पर विजय प्राप्त कर लिया, है ना? दोनों बातें थी। हाँ, कईयों को स्नान करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो वो इस जन्म में आने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद थोड़ी मेहनत लगी कि ये क्या है बार बार स्नान करने की बात। हाँ, जल्दी उठना। देखो ये जो स्थूल बातें थी उसके ऊपर हमने क्या हुआ, जैसे जैसे बाबा के साथ मोहब्बत बढ़ती गई वैसे वैसे ये मेहनत मेहनत नहीं लगती। अभी कितना भी बुखार भी क्यों ना हो तो भी फटक से नहा लेंगे, अगर नहीं नहाएंगे तो जैसे कि बहुत बड़ा पाप हो रहा है हमसे। तो ये स्थूल बातों में तो हमने कर लिया, है ना? और सूक्ष्म में भी बाबा से बहुत मदद मिली, कई धारणाएं अपने जीवन में हमने धारण कर ली जो नेचुरल हो गए, जो दुनिया के लिए असंभव है। इसी मुरली में है, ये जो मुरली है 17 मार्च 82 की, इसमें शुरुआत में ही बाबा ने कहा है कि दुनिया के हिसाब से तो आप कुछ भी नहीं थे, दुनिया वाले आप अगर आपको देखेंगे तो कहेंगे ये ऐसा व्यक्ति इतना श्रेष्ठ बन गया, इतना महान बन गया, वो लोग भी सोच में पड़ जाएंगे। तो इसमें बाबा ने टाइटल दिया है कि आपको बाबा ने, अनपढ़े को भी बाबा ने क्या बना दिया, नॉलेजफुल बना दिया। जो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उसको बाबा ने, इस रूहानी चीफ कमांडर ने हमें इस पांडव सेना में सम्मिलित कर दिया और अस्त्र शस्त्र पकड़ा दिए कि जो व्यक्ति उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, दुनिया में अगर आर्मी में भर्ती होना है तो पहले टेस्ट देना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर बाबा ने हमें, जो उठ नहीं सकते बैठ नहीं सकते ऐसे ऐसे बच्चों को बाबा ने क्या कर दिया, अस्त्र शस्त्र पकड़ा दिए। कि आप एक रूहानी योद्धा हो और बाबा कौन है, हमारा सेनानी है, रूहानी चीफ इन कमांडर है। तो देखो ये मेहनत भी बाबा ने हंसते हंसते करवाई। हाँ, नींद में भी शस्त्रास्त्र चला। योद्धा तो कभी सोता ही नहीं है, वो कैसे होता है? अलर्ट होता है, है ना, एवर रेडी होता है। और क्या होता है? मनन। अभी वो जो मेहनत हमें उस समय लगी जब हम ब्राह्मण बने शुरुआत में, अब वो मेहनत नहीं है, अब हमारी स्टेज आगे बढ़ी है ना? जैसे उस कौवे को कंकड़ पत्थर डाल के उसने क्या किया, मेहनत करके पानी को ऊपर लाया, अब वो तो पुरानी बात हो गई। अभी स्मार्ट कौवा बनना है, कौवा नहीं बनना है लेकिन स्मार्ट बनना है। तो अभी कौन सी मेहनत है हमारे जीवन में, अभी वर्तमान समय? तो कौन सी मेहनत है अभी इस जीवन में, अभी प्रैक्टिकल आज? या कोई मेहनत ही नहीं है? हाँ, इस पर भी एक स्टोरी है कि दो दोस्त थे, फ्रेंड थे, एक था नकुल और एक था हरीश। तो दोनों की दोस्ती जो है, फ्रेंडशिप जो है, गांव में प्रसिद्ध थे कि ये तो बड़े अच्छे दोस्त है, कभी झगड़ते नहीं है। तो एक बार क्या होता है, दोनों मिलके, दोनों को एक विचार आता है कि क्यों ना हम थोड़ी खेती लेके और हम अच्छी कमाई कर ले। तो दोनों मिलके, आपस में दोनों मिलके एक जमीन खरीद लेते, खेती खरीदते। तो जो नकुल होता है वो तो भक्त होता है, वो जाता है भगवान के पास, हे भगवान आपकी कृपा से, आपकी दया से मुझे तो ये संकल्प आया, बहुत बढ़िया जमीन मिली है, और वो भगवान के आभार व्यक्त करता है। हरीश खेत में जाता है और अपने काम में लग जाता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक वो मेहनत करता है, बीज बोता है, समय प्रति समय खेती में जल देता है, जो भी आवश्यक काम होते हैं वो सब करता है। अब खेती उनकी हरी भरी हो जाती है। तो जो नकुल होता है फिर भगवान के पास जाता है, हे भगवान आपका धन्यवाद, मेरा खेत तो बिल्कुल हरा भरा हो गया है, अब उसकी धान निकालने का भी समय हो जाता है, खेती हरी भरी से सुनहरी हो जाती है। तो वो धान भी काट लेता है हरीश, और बेच भी देते हैं। अब जब धन की पोटली आती है तब हरीश बोलता है कि देखो भाई, सारी मेहनत तो मैंने की है, तो इसमें अधिक धन जो है मुझे मिलना चाहिए। तो नकुल तो गुस्सा हो जाता है, बोलता है नहीं, ये तो हम दोनों का है, मैंने ही भगवान से मदद मांगी थी, और ये भगवान की कृपा से, भगवान की अनुकंपा से हमें ये प्राप्त हुआ है, तो अधिक धन तो मुझे मिलना चाहिए। तो अब वो दोनों कहाँ जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं। दोनों में झगड़ा हो जाता है, तो अब ये मामला सुलझाने के लिए सरपंच के पास जाते हैं। तो सरपंच बोलते हैं कि अच्छा, आप दोनों का ये झगड़ा है। तो सरपंच एक युक्ति रचते हैं, फिर दोनों को बोलते हैं, देखो मैं आप दोनों को एक काम देता हूं, आप दोनों में से इस काम को जो कर पाएगा अच्छे से या पहले, तो मैं उसी को अधिक धन देना चाहूंगा, तो मंजूर है आप दोनों को? तो दोनों किसान मित्र होते हैं, बोलते ठीक है, सरपंच की आज्ञा सिर माथे। तो फिर सरपंच जी उन दोनों को एक एक बोरी चावल देते हैं, जिसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिलाए होते हैं। तो उनको कहते हैं कि देखो, आपके पास एक रात है, आप इनको जितना हो सके बिन लो, अलग अलग कर दो कंकड़ और चावल को, और सुबह आ जाना। तो जैसे ही वो बोरी मिलती है, हरीश उस बोरी को लेके अपने घर चला जाता है, और नकुल जो है बोरी लेके मंदिर में चला जाता है कि देखो भगवान जी, आपके कृपा से अच्छी जमीन मिली, आपकी कृपा से अच्छा फसल भी हुई, और आपकी कृपा से अच्छा धन मिल रहा था, लेकिन वो हरीश है कि मुझे देना नहीं चाहता है। तो देखो अभी ये चावल से कंकड़ अलग करने हैं, तो आप ही मेरी मदद करो। और वो बोरी मंदिर में रखता है और जाके सो जाता है। हरीश बेचारा रात भर क्या करता है, दिया जला के चावल में से कंकड़ पत्थर निकालता है, और सुबह होते ही वो सरपंच के पास पहुंच जाता है एक छोटे से कटोरे में कंकड़ और चावल की बोरी, और बोलता है कि सरपंच जी, मैं इतना ही निकाल पाया। तो सरपंच जी हंसने लगते हैं, अच्छा इतना ही निकाल पाया, ठीक है हरीश को भी आने दो। तो हरीश आ जाता है, पूरी बोरी लेके आ जाता है। सरपंच आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे तुमने तो सारी बोरी साफ कर दी, सारे कंकड़ निकाल दिए क्या? बोलते हैं नहीं सरपंच जी, अभी मैंने तो भगवान के पास रखी थी, अभी देखते हैं क्या हुआ है। इतना विश्वास उसका, वो खोलता है सरपंच जी के सामने बोरी, तो वही कंकड़ पत्थर तो उसी में पड़े हैं। तो जैसे आज की मुरली का गीत भी है, तूने रात गवाई सो के और दिन गवाया खा के। यहाँ बाबा ने तो हमें भगवान भगवान काम क्यों करेगा, भगवान ने तो काम करने के लिए दो हाथ हमें दिए हैं, तो हमें क्या बनना है, कर्मयोगी बनना है, न कि सो के और खा के दिन रात संगम की इन अमूल्य घड़ियों को गवाना है आलस्य और अलबेलापन में। हमें अलर्ट बनना है, एवर रेडी बनना है, और क्या बनना है, ऑलराउंडर। हाँ, तो ऑलराउंडर भी बनना है। तो बाबा हमें मेहनत से मुक्त कराने आए हैं, लेकिन कौन सी मेहनत से, उस सेकंड वाले, पहली वाली मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो देखो उसने रात भर जाग कर क्या किया, दिए के सामने कंकड़ पत्थर अलग किए, तब तो उसकी भगवान की मदद मिली और तब तो उसको ज्यादा धन की प्राप्ति हुई। तो पहली मेहनत हमने की भगवान को ढूंढने की, और भगवान ने भी हमें ढूंढ लिया, हम बाबा को मिल गए। लेकिन और भी कुछ बातें हैं जो बाबा ने हमें सौंपी है कि आपको भी सतयुग मिलेगा। इसमें कहा है कि बाबा बाबा कहने से, मेरा बाबा कहने से आप सतयुग में भी आ जाएंगे। तो वो सतयुग कब मिलेगा, हाँ, तो संगम की भी मौज तभी प्राप्त होगी, संगम के भी सुख तभी प्राप्त होंगे, संगम के भी झूले तभी हम झूल पाएंगे जब हमारी स्थिति, जब हमारा दिमाग ठीक हो। अगर यही ठीक नहीं है तो वो सुख नहीं अनुभव कर पाएंगे। अगर हम, हाँ, भविष्य है सपना और संगम युग है अपना। तो यहाँ भी हम अगर एक दूसरे को सहयोग करेंगे, हाँ, जो हमारे अंदर विशेषता है उसको कार्य में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे, हाँ, तो नई विशेषताओं को भरने की मेहनत करेंगे, तब जाके हमारे में जो मेहनत है, कई कार्य होते हैं जो होता बहुत आसान है, लेकिन उसको करने का तरीका, उसकी विधि क्या, अगर पता नहीं है तो वो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। कई बातें होती है ऐसी, चलो एक बता दो प्रैक्टिकल में, स्थूल कार्य। हाँ, एक तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कि किसी भी बात का हमें अगर ज्ञान ही नहीं है तो मेहनत लगेगी। अगर नॉलेज ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसके बारे में, तो वो जरूर लगेगा यार ये तो बहुत मेहनत वाला काम है। लेकिन हमें उसका नॉलेज जब प्राप्त होता है तब वो आसान हो जाता है, कि ये कोई बड़ी बात नहीं। चलो अभी हम, हाँ, जैसे साइकिल चलाना, कि प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए, दूसरा जब चलाता है तो अच्छा लगता है, आसान है, पीछे बैठना भी आसान है, लेकिन जब खुद को जब साइकिल सीखने के लिए जब हम हाथ में पकड़ते हैं तो गिरना पड़ता है ना, कई बार तो चोट भी लग जाती है, डर भी लगता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहला प्रयास तो करना पड़ेगा, पानी में कूदना तो पड़ेगा, तब तो जाके हम तैरना सीख पाएंगे। तो ये मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। तो अभी हम देखते हैं कि बाबा ने जो हमें चार सब्जेक्ट दिए हैं, उस चार सब्जेक्ट में कौन कौन सी मेहनत होती है। तो सीरियली देखते हैं कि ज्ञान में कौन सी मेहनत होती है, कौन सी मेहनत लगती है, हाँ, कि याद ही नहीं रहता है। पहली मेहनत तो है कि याद रखने की मेहनत, याद ही नहीं रहता है, पूरी मुरली सुन ली, क्या कहा बाबा ने, कुछ भी याद नहीं, गीत भी याद नहीं, वरदान भी याद नहीं। हाँ, बाबा ने बहुत, आज की मुरली बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या कहा बाबा ने याद ही नहीं। हाँ, तो और मुझे याद है, हाँ, एक स्टूडेंट थे हमारे भी क्लास में, भंजी ने अगर मुरली के बाद पूछा क्या कहा बाबा ने, तो वो बड़े स्टाइल से कहता था कि बाबा ने आज कहा है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस रोज यही बताते। और एक बुजुर्ग थे जो रिटायर्ड थे, वो बस ड्राइवर थे, रिटायर्ड थे, वो किसी को बोलने ही नहीं देते थे। जैसे ही बहन जी ने इधर पूछा कि क्या कहा बाबा ने, वो फटाक से वरदान स्लोगन सारा 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 किसी को बोलने ही नहीं देते थे, तो बहन जी को उनको डांटना पड़ते था, वो एक्स्ट्रा ज्ञान था उधर रोज का उनको याद रहता था, बुजुर्ग थे तो ज्ञान की मेहनत क्या क्या पड़ती है, और हाँ टॉपिक निकालना, चिंतन करना, मेहनत लगती है। हाँ, कि जब इंस्टेंट टॉपिक भी मिलता है तब भी मेहनत लगती है। और ज्ञान में कौन कौन सी मेहनत लगती है? ज्ञान का मन, ज्ञान सुनाना किसी को मेहनत लगता है ना? और हाँ, जितना हो सके इजी हो सके। और लिखना मेहनत लगता है। ज्ञान में दो बातें होती है ना, एक पढ़ना होता है, एक लिखना होता है, एक सुनना होता है, एक सुनाना होता है। सुनते समय क्या होता है, नींद आ जाती है, पढ़ते समय नींद आ जाती है, लिखते समय उंगली में दर्द होने लगता है कि क्या लिखना है ना। तो ये जो हमारी पढ़ाई है, ज्ञान जो पहला सब्जेक्ट है, उसमें हमें मेहनत तो नहीं लगती है, तो उस मेहनत से बाबा हमें कैसे छुड़ाते हैं? तो ज्ञान में बाबा हमें रोज नई नई बातें, रमणीकता देते हैं। तो अगर हम रमणीकता में रोज नई नई बातें बाबा सुनाता है, तो हमें क्या लगता है, नयापन लगता है, नवीनता लगती है, मेहनत मुक्त हो जाते हैं, है? कहानी के रूप में सुनाते हैं। तो ज्ञान कौन सा, एक तो हमें इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए उस बात का, महत्व, उस ज्ञान का महत्व। दुनिया में जो ज्ञान है उससे अल्पकाल की कमाई हो रही है, लेकिन इस ज्ञान से हमें प्रत्यक्ष फल भी मिल रहा है, संगम में भी कमाई है, तो भविष्य की भी जो कमाई है वो हमारे सामने होंगी, तो हमें मेहनत नहीं लगेगी ज्ञान में। कौन कौन सी बातों में? ज्ञान सुनने में, ज्ञान सुनाने में, पढ़ने में, लिखने में मेहनत नहीं लगेगी। हो गया ज्ञान सब्जेक्ट? और कुछ प्रश्न है? हाँ, डायरी रखने में, चार्ट रखने में, बाबा ने कहा है कि चार्ट, हाँ वो आगे आएगा। अब अगला जो है योग, योग में कौन सी मेहनत आती है? चलो बैठने से लेते हैं पहले, कि बैठ नहीं पाते, तुरंत पैरों में चींटी आती आती है, एक पैर बदलेंगे दूसरा, है ना? पद्मासन में बैठ नहीं सकते हैं, है ना? बैठने में ही दिक्कत है, फिर बैठने के बाद नींद आती है। और योग में कौन सी मेहनत लगती है? हाँ, बैठ तो गए, सामने ट्रांसलाइट है, लाल लाइट है, अच्छा म्यूजिक बज रहा है, वायुमंडल भी अच्छा है, लेकिन मन बुद्धि सुबह से लेकर दिन भर कौन सा काम बाकी है, किसको मिलना बाकी है, वो सब बातें उसी समय याद आ जाती है। भले वो व्यर्थ नहीं है, सेवा के प्रति वो आपकी बातें हैं, लेकिन वो समय हमारा पर्सनल मीटिंग का है बाबा के साथ, तो उसमें क्या हो जाता है, योग के समय वो बातें हमें डिस्टर्ब करती हैं। हाँ हाँ, बाजू वाले के ऊपर फोकस होने लगता है, पर चिंतन पर दर्शन में लगते हैं, उसका मोबाइल बजा, उसने कुछ आवाज कर दिया, तो योग में वो बाधा बन जाता है। हाँ, पंखा है तो शारीरिक व्याधि है, गर्मी है, ठंडी है, परदर्शन है, व्यर्थ संकल्प है, तो इससे क्या हो जाता है, योग में हम उस स्टेज जो है, हमें क्या बनने आए हैं, यहाँ पे राजयोगी बनने आए हैं। कौन योग कितने प्रकार के हैं? हाँ नहीं, हमारे यहाँ पर बाबा ने जो राजयोग, कर्मयोग, सहज योग, माँ मन योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तो ये जो योग है, तो इसको हम तीन कैटेगरी में लेंगे, याद योग और तपस्या। याद माना नेचुरली याद आ जाना कि अभी बाबा शिव बाबा याद आ गया। फिर दूसरा है योग, कि जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल माना नुमा शाम का है, अमृत वेला है, ये हो गया योग। और तीसरा है तपस्या, कि जो अंदर से तड़फ लगी, आग लगी है, कि ज्वालामुखी, कि मुझे क्या करना है, अभी तपस्या करनी है, अंदर से वो आग लग जाना। तो इसमें कौन कौन से विघ्न पड़ते हैं? हाँ
खामोश योग, सिर्फ बैठे रहेंगे तवाई होके, ठीक है वो बात भी ठीक है, कम से कम बाबा के कमरे तक पहुंच तो गए, उस समय को तो पहुंच गए, हाँ खटिया छोड़ के तो आ गए, उसमें भी सेवा समाई हुई है। और कभी दादी जी ने कहा था कि अगर मटका है भले वो सुलटा नहीं हो पाया है, उल्टा तो सही लेकिन नलके के नीचे तो है, ठंडा तो रहेगा, ठंडा तो रहेगा है ना, तो उस तो इतना समय हम अपना सफल तो कर रहे हैं। तो देखो याद में भी कितनी मेहनत होती है, जो करते करते हम क्या बन जाते हैं, फिर सहज योगी कर्म योगी भी बन जाते हैं। अब धारणा में हमें कौन कौन सी मेहनत करनी पड़ी, हाँ ज्ञान की धारणा में है ना, धारणा में वही जो हमने पहले देखा था कि लोकलाज धारणा थी, स्थूल धारणा थी, सफेद कपड़ा पहनना है, लेकिन लोकलाज थी, लोग हंसेंगे क्या बोलेंगे। फिर भोजन, पहले वो भोजन हमें छोड़ना था, इस भोजन को शुद्ध भोजन को अपनाना था, पहले वो मेहनत थी लेकिन आज वो मेहनत है नहीं। लेकिन आज हम कौन सी मेहनत में फंसे हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बना के खाने में क्या हो रहे हैं, व्यस्त हो रहे हैं है ना, उस मेहनत में लगे हुए हैं, जबकि बाबा को तो ये सब चाहिए नहीं है। बाबा ने कहा है दो रोटी दाल चावल ठीक है बस इतने में हो जाए, हाँ ज्ञान योग में भोग का कोई रिलेशन नहीं। और 15 दिन पहले ही बाबा ने ये भी कहा था कि ये भोग आदि ये जो भी है ये भी रसम है, इससे ये एक रसम है, ये कोई इससे आपका विकर्म विनाश होने वाले नहीं, ये तो हमारी भावना है बाबा के प्रति जो हम व्यक्त करते, प्यार है। और इच्छाएं, धारणा कब नहीं हो पाती है हमारी इच्छाओं के ऊपर, हाँ हम इच्छा को समाप्त नहीं कर सकते लेकिन इच्छा को कम जरूर कर सकते, लेकिन इस इच्छा को कम करने की भी क्या होनी चाहिए, अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हाँ भाई अभी मुझे ये नहीं करना है, तो वो भी क्या होनी चाहिए अंदर में, इच्छा होनी चाहिए। फिर वचन बोल, जैसे कि बाबा ने धारणा बताई हुई है कि कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो, लेकिन मुख के ऊपर भी कंट्रोल पाना मेहनत लगता, पहले लगता था, अभी हमने मुख के ऊपर कंट्रोल कर लिया है तो कई प्रकार की मेहनत से हम बच गए। हाँ अभी सेवा, सेवा में कौन सी मेहनत लगती थी पहले जो अभी नहीं है, हाँ जैसे चाचा ने किचन में सेवा की थी, लकड़ियां जलाना पड़ती थी, अभी तो क्या है हमारे पास गैस है, अभी हमारे पास कई साधन है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि नहीं फॉलो फादर, बाबा ने ऐसे किया, दादियों ने ऐसे किया तो हमें भी ऐसे करना है। अभी बाबा ने साकार बाबा जब थे तो उन्होंने क्या किया, गोबर के उखले लगाए, तो उसमें क्या किया बाबा ने, वो करते समय स्वमान लिया कि मैं विश्व का गोला बना रहा तो अभी कोई बहन जी है उनको लगा कि मुझे भी फॉलो फादर करना है, अभी उसके लिए तो गाय पालनी पड़ेगी बहन जी को, फिर वो गोबर आएगा, फिर उसके उपले बनाएंगे, फिर वो चूल्हा जलेगा, और फिर सेंटर को इतना लाखों रुपए लगा पेंट करने को, दीवार काली हो जाएगी, पड़ोसी भी परेशान हो जाएंगे कि ओम शांति वाले क्यों धुआं करते हैं तो हाँ तो फॉलो फादर हमें तो फॉलो फादर हमें इन बातों में नहीं करना है, वो समय गुजर गया, बाबा ने गोबर के उपले लगाए तो वो समय बीत गया, अभी वो मेहनत तो हमें नहीं करनी है, तो इसमें हमें फॉलो फादर नहीं करना है। देखो जगदीश भाई जी के बारे में भी कहा था कि उन्होंने बताया कि बाबा ने उनको कुछ होमवर्क दिया था, कुछ लेटर लिखना था मिनिस्टर को, 3-4 लोगों को एक साथ दिया था, तो उस समय लाइट चली गई तो भाई जी स्ट्रीट लाइट जो थी रास्ते पे आके वहां आके उन्होंने क्या किया, वो पत्र होमवर्क पूरा किया, तो अभी हमें स्ट्रीट लाइट पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, घर में इतने सारे साधन पड़े हुए हैं, मोबाइल की टॉर्च है, हर एक के पास है, जरूरी नहीं कि दिया जलाए, आजकल कोई नहीं जलाता है, साधन इतने हैं, सोलर है, बैटरी बैकअप है, बहुत सारी बातें। तो वो स्थूल मेहनत से तो आज हम छूट गए हैं लगभग पूरी तरह से, लेकिन और अब वर्तमान समय हमें कौन सी मेहनत है सेवा में? हाँ, साधन होते हुए भी मेहनत है। क्यों है वो मेहनत? क्योंकि साधना ही नहीं है सेवा में, साधना ही नहीं है, बाप की याद ही समाई हुई नहीं है और निकले हैं सेवा करने, अटके हुए हैं, फोटो निकाले, कोई हमारा फोटो निकाले, लेकिन सूक्ष्म में उस आत्मा को जो वाइब्रेशन देने हैं, हाँ, अपने को खुद को आत्मा पर, खुद की सेवा नहीं की है, खुद ही भरपूर नहीं है, खुद के साथ ही बाबा नहीं है और दूसरे को सिखा रहे कि बाबा को कैसे साथ रखना है, कैसे मेरा बाबा यूज करना है, खुद को ही यूज करने का पता नहीं है, खुद का ही वो मेरा बाबा वाला गिफ्ट अच्छे से पैकिंग में लगा के कबर्ड में रखा हुआ है ना। और सेवा में कौन सा? हाँ, और एक सेवा में माया है आजकल, चॉइस है। हाँ, बाबा ने कहा है ना कि बच्चे अगर आपको सेवा में पसंद नहीं है या कुछ मन मुटाव है तो सेवा छोड़ दो, इसमें नंबर वन ले रहे हैं आजकल, सेवा छोड़ दो। अगर स्थिति नहीं है, आप बन रही है, आपकी स्थिति नहीं बन रही है तो सेवा छोड़ दो, उसमें अभी कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो सेवा में कभी चॉइस नहीं होना चाहिए, सेवा में तो हमें चांसलर बनना है, चांस लेना है। सेवा में नो चॉइस, सेवा में चांस लेना है, चांसलर बनना है। तो ये लॉकडाउन ने हमें क्या बना दिया है? चांसलर बना दिया है सेवा में। हाँ, लॉकडाउन ने हमें लकी बना दिया है। तो जो लेजी बने हुए हैं, जिनको लगता है कि नहीं मैंने तो अपनी सेवा पूरी कर दी है और वो अपने लकीर के फकीर बन के बैठ गया है, तो उसके लिए भी आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छे से गाइडलाइन दी है कि कौन सी वो तीन बातें, अलर्ट, एवर रेडी, ऑलराउंडर। तो अगर ये तीन बातें होंगी तो हम क्या नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, आलस में नहीं आएंगे और क्या रहेंगे, सदैव कौन से झूले में झूलते रहेंगे, जो प्रश्न के उत्तर में बाबा ने बताया, आराम से खुशी के झूले में झूलते रहेंगे इंशाल्लाह। सदा बाप की याद के आराम में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।